यहोशु अध्याय 10। अध्याय 10 पद 6 में गिबोनियों ने यहोशु को आपातकालीन संदेश भेजा कि उन पर आक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे मध्य सुरक्षा की संधि की गई है, अतः तुम हमारी रक्षा करो। और यहोशु ने संधि को सम्मान देते हुए अपने सैनिक लिए और पूरी रात चलता हुआ गिबोन के क्षेत्र में गया, जहां सब राजा लोग अपने रथों और घोड़ों को लेकर तैयार खड़े थे। युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर ने यहोशु से कहा और उसे प्रतिज्ञा दी कि वो उसके साथ होगा। और यहोवा ने यहोशु से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशु रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथेरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मखेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशु ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयालोन की तराई के ऊपर थामा रह। और सूर्य उस समय तक थामा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या ये बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। यहोशु 10 अध्याय 8 से 14 पद। ये एक अद्वैत घटना थी। आप जब भी बाइबल के चमत्कारों की चर्चा करते हैं तब ये घटना कुछ लोगों को उत्तेजित करने के लिए काफी होती है, और विशेष करके उनको जो परमेश्वर को नहीं मानते या वे जो परमेश्वर को मानव रूप में सीमित कर देते हैं। चमत्कारों पर लोग प्रायः शक करते हैं, जिसके कारण वे प्रत्यक्ष समस्याओं के विषय बात का पतंगड़ बना देते हैं। उनका तर्क सम्मत उपहास ये है कि सूर्य और चंद्रमा रुक जाने का अर्थ है पृथ्वी का रुक जाना, जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि पृथ्वी अचानक ही रुक जाए तो हम सब जो उसके साथ 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार में हैं, अपने स्थान से उखड़ जाएंगे। इस प्रकार वे पृथ्वी के रुक जाने को नहीं मानते हैं। परंतु वहां नहीं लिखा है कि पृथ्वी अचानक ही रुक गई। अब मान लो कि पृथ्वी 8 मिनट में रुकी, तो इसकी तुलना हम एक मोटर कार से कर सकते हैं जो लाल बत्ती आने पर 60 मील की रफ्तार से चलते हुए 30 सेकंड में जाकर लाल बत्ती पर रुकती है। आपको कोई झटका नहीं लगेगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी पृथ्वी को 8 से 10 मिनट में रोका होगा। आपको गति का आभास झटके से ही होता है। जब आप रेलगाड़ी में बैठे होते हैं तब आपको आभास भी नहीं होता कि रेलगाड़ी चल दी है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और तब आपको मालूम होता है कि गाड़ी चल रही है। क्योंकि स्टेशन पीछे छूट जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने भी पृथ्वी को 8 से 10 मिनट में धीरे धीरे रोका होगा और किसी को भी पता नहीं चला कि पृथ्वी रुक गई, क्योंकि किसी को झटका नहीं लगा। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपनी खोज करते हुए समय के अतीत में गए तो उन्होंने पाया कि एक दिन कहीं खो गया है, परंतु ये एक अफवाह मात्र थी, सच नहीं था। इस प्रकार वो एक लंबा दिन था। यहोशू जानता था कि बैरी को मिटा देने में एक दिन से अधिक समय लगेगा, अतः उसने कहा, सूर्य तू, चंद्रमा तू, ठहरा रह। लोगों के सामने ऐसा कहना एक विचित्र सी बात रही होगी, या तो वे उसे मूर्ख समझ रहे होंगे या एक चमत्कारी मानव। अब हम ये नहीं जानते कि यहोशू की भी ऐसी आशा थी या नहीं, परंतु ऐसा ही हुआ और एक दिन का समय बढ़ गया और उन्हें दुश्मन का सर्वनाश करने का समय मिल गया। साथ ही साथ उन पर आकाश से पत्थर और ओले बरसे, जिससे इतने लोग नाश हुए जितने यहोशू की सेना ने तलवार से नाश नहीं किए थे। एक बड़ी ही रोचक पुस्तक है जिसका शीर्षक है वर्ल्ड्स इन कोलिजन, अर्थात ग्रहों में टकराव, जिसका लेखक है इमैनुअल वेलकोस्की। उसके अनुसार शुक्र ग्रह ने, जो कभी एक पुच्छल तारा था, मानव इतिहास में सौर मंडल में प्रवेश किया है और इसके प्रवेश को लगभग 6000 वर्ष की हुए हैं। उसने 2 परिक्रमा पथ लिया था, परंतु वो दूसरे परिक्रमा पथ में स्थिर होकर सौर मंडल का एक भाग बन गया। उसका पहला प्रवेश उस समय हुआ था जब इसराइल के वंशज मिस्र से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेखक मिस्र पर आने वाली अधिकांश विपत्तियों को शुक्र ग्रह के पृथ्वी के निकट आने का परिणाम बताता है। लेखक के अनुसार शुक्र का दूसरा प्रवेश यहोशू के युग में इस घटना के समय हुआ था। उसके अनुसार शुक्र के प्रवेश से पूर्व पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमती थी। उसने अपनी पुस्तक में यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि यहोशू के युग में वहां लंबा दिन हुआ था तो कहीं पर लंबी रात भी हुई होगी, जैसे कि अमेरिका में, या कहीं लंबी सुबह या शाम, और वो भी उसी युग में। अतः उसने पेरू के प्राचीन आदिवासी इतिहास में नाना प्रकार की प्रलयकारी घटनाओं का अध्ययन किया और उसने पाया कि वहां एक रात ऐसी थी जब पूरी रात की लंबाई बढ़ गई और सूरज उदय नहीं हुआ। उसने उस समय होने वाली विनाशकारी घटनाओं का अध्ययन भी किया, जैसे भूकंप, आंधी तूफान, समुद्री प्रलय जो पृथ्वी के रुक जाने के कारण आ सकते थे, और अपनी इस पुस्तक में उसने उन सब घटनाओं का उल्लेख किया है। इमैनुअल वेलकोस्की मसीही विश्वासी नहीं है, ना ही आवश्यक है कि वो आस्तिक हो। वो एक वैज्ञानिक है जिसने मानव इतिहास में शुक्र ग्रह के सौर मंडल में प्रवेश पर अनुसंधान किया है। वो अपने सिद्धांत के सहयोग में बाइबल को एक प्रमाण मानता है, विशेष करके यहोशू के समय के इस लंबे दिन को। वो इस घटना को प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास के संदर्भों से सिद्ध करता है। मुझे ये पुस्तक पसंद है, परंतु इसलिए नहीं कि मेरी जिज्ञासा का विषय शुक्र ग्रह का सौर मंडल में प्रवेश है, परंतु इसलिए कि लेखक की ये पुस्तक बाइबल के उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो यहोशू के युग की इस घटना का ठट्टा करते हैं। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। यदि आपको किसी प्रकार का शक हो तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। यदि परमेश्वर के बारे में आपकी समझ सिद्ध है तो आप प्रमाण कभी नहीं खोजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। परंतु कुछ लोग ये जानते हुए भी कि परमेश्वर का वचन सत्य होता है, बाहरी संदिग्धता के कारण डावाडोल होने लगते हैं, विशेष करके ऐसी कहानियों में जहां एक मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दे और वे उसका पालन करें। ये पुस्तक बाइबल आधारित नहीं है। इसमें विज्ञान और इतिहास के प्रमाण लिखे हुए हैं जो बाइबल के संशयवादियों के लिए एक उत्तम पाठन सामग्री है। मुझे तो इस पुस्तक के पढ़ने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था। ना तो कोई पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना इसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा इसराइल की ओर से लड़ता था। यहोशू 10:14 पद। उसका एक मत ये भी है कि आज पृथ्वी की धुरी जो 233 डिग्री पर झुकी हुई है वो इसी समय झुकी थी और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जम गई। लेखक इस विषय पर भी बहुत कुछ लिखता है। तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो। यहोशू 10:15-18 पद। अब क्योंकि इन नगरों के पुरुष युद्ध में आ गए थे और मारे गए थे, यहोशू और उसकी प्रजा ने उन नगरों में प्रवेश करके अपना अधिकार वहां जमा लिया। उन्होंने यरूशलेम पर अधिकार नहीं किया। जिन नगरों पर उन्होंने अधिकार किया उनकी सूची यहां दी गई है। हेब्रोन, युरमात, लाकिश और एग्लोन। अंत में यहोशू ने उन पांचों राजाओं को जिन्हें उन्होंने गुफा पर पत्थर रखकर बंद कर दिया था निकाला और योद्धाओं के प्रधानों से कहा। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए तब यहोशू ने इसराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसे ही करेगा। यहोशू 10:24-25 पद। यहोशू ने उन पांचों राजाओं को मार डाला और उनके शव पेड़ों पर लटका दिए। सूर्य अस्त पर उन्हें उतरवाकर उन्हें इसी गुफा में दफन कर दिया जिसमें वे छिपे थे। जिस समय ये पुस्तक लिखी गई उस समय उनके अवशेष इसी गुफा में थे। इस प्रकार उन्होंने आक्रमणकारी राजाओं के नगरों को अपने अधिकार में कर लिया। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इसराइल की ओर से लड़ता था। यहोशू 10:42। पद 14 और पद 42 में ये घोषणा की गई है कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इसराइल की ओर से लड़ता था। जब यहोशू सब इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया, यहोशू 10:43, न्यायियों की पुस्तक में एक भजन दर्शाता है कि यहोवा अपने लोगों की ओर से युद्ध करता है और सितारों को शस्त्र बनाता है। कुछ मत धारक है जो अपने आप को ईश्वर परायण विकासवादी कहते हैं। उनके अनुसार परमेश्वर ही सृष्टि करता है, परंतु आरंभिक सृष्टि के बाद वो पीछे हट गया और उसने जगत को क्रमवार विकास के लिए नियुक्त कर दिया, और वे परमेश्वर की ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे उसका व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं होता, जैसे सामर्थ का बल, अर्थात उसने एक कोशिका की रचना करके छोड़ दी कि अब वो अपने आप विकसित होती रहे। इसे कहते हैं ईश्वरवादी क्रम विकास। ये बाइबल और विकासवाद में सामंजस्य पैदा करने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सत्य तो यह है कि इससे समस्याओं का समाधान नहीं, परंतु जटिलता ही उत्पन्न होती है। ईश्वर परायण विकासवादी वे हैं जो जगत के एक रूपतावाद में विश्वास रखते हैं। इनके विषय में पत्रस ने अपनी दूसरी पत्री के अध्याय 3 और पद 3 और 4 में उचित ही कहा है। अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। एक रूपतावाद को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, सब कुछ वैसे ही है जैसा आरंभ में था, अर्थात जगत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे कि कोई प्रलय। अतः हम देखते हैं कि एक रूपतावाद वास्तव में बाइबल के विचारों के विपरीत है। इस विचार के अनुसार तो आप एक रूपतावादी होकर विश्वासी नहीं रह सकते हैं, वे परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। इमैनुअल वेलकोस्की अपनी एक और पुस्तक अर्थ इन अपवीवल, पृथ्वी पर उथल पुथल में, एक रूपतावाद को अविवादित प्रमाणों द्वारा समाप्त कर देता है। लेखक की दोनों पुस्तकों ने वैज्ञानिकों में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न किया है, क्योंकि उसने एक रूपतावाद को चुनौती दी है। अपनी इस दूसरी पुस्तक में उसने एक रूपतावाद की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि इस पुस्तक में उसने सिद्ध कर दिया है कि एक रूपतावाद निराधार है। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जगत में प्रलयकारी परिवर्तन आने आवश्यक थे। अर्थ इन अपहीवल अर्थात पृथ्वी पर उथल पुथल, इसमें उसने नूह के समय के जल प्रलय के ठोस प्रमाण रखे हैं, जैसे विभिन्न प्राणियों की हड्डियां जो इंग्लैंड की गुफाओं में पाई गई हैं। वे हड्डियां खरगोश और शेर की हड्डियां हैं जो एक साथ कभी रह ही नहीं सकते थे। ये हड्डियां टूटी हुई है, जैसे कि किसी बल के कारण टूट गई हो। ये समस्त प्राणी एक ही दुर्घटना के शिकार रहे थे। वो इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। धर्मशास्त्र इसका उल्लेख करता है कि वो परमेश्वर का हस्ताक्षेप का परिणाम था। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम परमेश्वर को सांसारिक घटनाओं से दूर मानते हैं। हमारी समझ में वो मुझ में सक्रिय रुचि नहीं रखता है और मेरे दैनिक कार्यकलाप से दूर रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम ध्यान रखें, परमेश्वर हमारे साथ हर समय और हर जगह रहता है और हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में वो रुचि रखता है। वो आपकी चिंता करता है, वो छोटी छोटी परेशानियों में भी आपके लिए चिंतित हो जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर के कान धर्मी की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर गरीबों के लिए कहता है कि जब वे मुझे पुकारते हैं तब मैं निश्चय ही उनका पलटा लेता हूं। कभी ऐसा होता है कि हमें किसी को पैसा देना होता है और वो हमें बहुत परेशान करता है। हमें ये बोध नहीं कि परमेश्वर देख रहा है और हमारी आहें सुन रहा है। हम इस बारे में सोचते भी नहीं, परंतु परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों में रुचि रखता है। यहां यहोशु भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य है जो युद्ध में व्यस्त है। इसके बैरी हार आवश्य रहे हैं, परंतु दिन ढलता जा रहा है। उसकी चिंता का विषय यह है कि यदि सूरज ढल गया तो बैरी का संपूर्ण विनाश किए बिना युद्ध रोकना पड़ेगा। अतः उसने कहा, सूरज रुक जा, और सूरज पूरा दिन रुका रहता है। हम यह विश्वास तो रखते हैं कि परमेश्वर हमारे कान का दर्द ठीक कर सकता है, परंतु ये नहीं जानते कि वो हमारे जीवनों में नाटकीय रूप से सामर्थी कार्य भी कर सकता है। एक बार की घटना है कि मुझे किसी दूसरे स्थान पर अपना मकान बदलना था जो बहुत दूर था, और मैं उस समय काम में इतना अधिक व्यस्त था कि मुझे दिन में समय ही नहीं मिल रहा था। इस कारण मैं रात में अपना सामान उठा रहा था। इस दूर की यात्रा में मेरे मन को शांति देने वाली एक ही चीज थी कि मैं कार चलाते चलाते अपना रेडियो प्रोग्राम सुनता रहूं। मेरी कार का एक स्पीकर तो निकाल कर किसी और काम में लगा दिया गया था, और एक स्पीकर जो बचा था वो ठीक से चल नहीं रहा था। मैंने परमेश्वर से शिकायत करना आरंभ कर दी कि मेरे रास्ते का एक ही साथी है मेरा रेडियो प्रोग्राम, और मैं उसे भी सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी कार का स्पीकर खराब हो गया है। तभी मेरे मस्तिष्क में स्पीकर का वो तार स्पष्ट दिखाई देने लगा जो निकलकर लटक रहा था। मैंने तुरंत अपनी कार रोकी और पीछे का टब खोलकर देखा तो मैं चकित रह गया। ठीक जैसे मेरे मस्तिष्क में चित्र उभरा था वैसे ही वो तार लटक रहा था। मैंने उस तार को जोड़ दिया और रेडियो चलाकर देखा तो वो एकदम ठीक था और स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, तू मेरी इतनी छोटी सी बात में भी रुचि रखता है। परमेश्वर तो हमारे बहुत निकट है और हमारे जीवन में गहराई से भाग लेना चाहता है, परंतु क्या हम कभी उसे कुछ कहते हैं? क्या आपने कभी उसे सीधा प्रश्न किया है और सीधा उत्तर पाने की प्रतीक्षा की है? मैं आज आपको बता दूं कि मैंने उत्तर पाने की आशा नहीं रखी थी। मैं तो केवल शिकायत कर रहा था, परंतु मैंने पाया कि यदि मैं सीधा प्रश्न पूछूंगा तो सीधा उत्तर भी पाऊंगा, और मुझे तब ये बोध हुआ कि मैं प्रश्न पूछता ही नहीं हूं। परमेश्वर उपस्थित रहता है, वो रुचि रखता है, वो काम करना चाहता है, वो अंतरिक्ष में कहीं दूर नहीं है। हमारा परमेश्वर दूर नहीं है, वो हमारे साथ जीवंत संबंध बनाकर रखना चाहता है। वो आपकी छोटी छोटी परेशानियों में हस्तक्षेप करना चाहता है। आप उसकी संतान हैं, वो आपको निराश नहीं देख सकता, वो आपको चिंतित और कुड़कुड़ाता हुआ नहीं देख सकता। वो आपकी सहायता करना चाहता है। आप परमेश्वर को दूर न समझे कि आप उस तक नहीं पहुंच सकते। पौलुस ने एथेंस के दार्शनिकों से कहा था कि हम परमेश्वर में जीते हैं, चलते फिरते हैं और उसमें हमारा अस्तित्व है। परमेश्वर हम में रुचि रखता है, वो अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन करना चाहता है, वो अपने प्रेम को हम पर प्रकट करना चाहता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, याकूब 4:2। परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कीजिए, ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि वो पास में है वो आपके साथ है। यहां परमेश्वर ने यहोशु और उसकी प्रजा को सामर्थी रूप से दिखा दिया कि वो उनमें रुचि रखता है और वो उनके अति निकट है। इन राजाओं पर विजय पाने का अर्थ था कि उस प्रदेश में उनके बड़े बैरी समाप्त हो गए थे। इससे आगे के अभियान तो मात्र झाड़ू लगाने के समान था।